ओम शांति,
ओम शांति।
आप पिछले 3 दिनों से मॉर्निंग सेशंस में राजयोग के बारे में सुन भी रहे हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं। तो आज राजयोग का आधार क्या है और विधि क्या है, इस विषय में हम विस्तार से समझेंगे। आपने जाना राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से मानसिक स्नेहपूर्ण संबंध, और ये सर्वश्रेष्ठ संबंध है क्योंकि ये सर्वोच्च के साथ संबंध है, और इसीलिए ये सर्वोच्च प्राप्ति कराने वाला भी संबंध है। ये राजयोग है क्योंकि ये हमें स्वयं का राजा बनाता है, यानी हम कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनते हैं। सामान्यतः हम कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। लेकिन जब हम योग अभ्यास करते हैं तो इंद्रिय संयम आने लगता है, और ये राजयोग इसलिए भी है क्योंकि इसमें अनेक राज समाये हुए हैं। उन राजाओं को जानने के बाद ही हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो हमने आत्मा का राज समझा, परमात्मा का राज समझा, और इसमें ही समय चक्र का भी राज है, जो राजयोग के आगे के सेशंस हैं। और राजयोग स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है, ये किसी भी संत महात्मा ने, गुरु ने नहीं सिखाया है, स्वयं परमात्मा शिव हमें राजयोग सिखाते हैं। राजयोग एक चार्जर की तरह है, जैसे एक डिस्चार्ज बैटरी होती है रिचार्जेबल, तो उसे हम चार्जर में रख के फिर से चार्ज कर लेते हैं। तो साइंटिफिक वे में बैटरी डिस्चार्ज होती है क्योंकि उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसे चार्ज करते हैं तो वो कंपोनेंट्स फिर से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और वो बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा रूपी बैटरी है, तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। उसकी निशानी है कि हमारे मन वचन कर्म डिसऑर्गेनाइज होते हैं, हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यानी विचारों में और कर्मों में कोई साम्य नहीं होता है। लेकिन जब हम चार्ज्ड होते हैं तो फिर जो हम सोचते हैं वो करने की शक्ति भी हमारे अंदर होती है। तो राजयोग सभी योगों का फल देने वाला है। भारत में कई प्रकार के योग किए जाते हैं, राजयोग का अभ्यास, उसमें सभी योग समाये हुए हैं। राजयोग ज्ञान योग है, ये बुद्धि योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, समत्व योग है, संन्यास योग है, हठ योग है, क्रिया योग है, और भी जो योग किए जाते हैं। ये ज्ञान योग है क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है, हमें इसमें समझ मिलती है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा कौन है, उनसे संबंध प्राप्ति क्या है। तो अंधश्रद्धा नहीं है, हमें पता है कि किस लक्ष्य से हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, क्या प्राप्ति हमें होने वाली है। फिर ये बुद्धि योग है क्योंकि परमात्मा को हम मन और बुद्धि से याद करते हैं। मन और बुद्धि ये अदृश्य माध्यम है, अदृश्य माध्यम है यानी जब हम मन से ईश्वर का चिंतन करते हैं तो हमारा संबंध ईश्वर से होता है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता है। आज साइंस के इस युग में हम अदृश्य माध्यमों के अनुभवी हैं, मोबाइल से हम बात करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं, दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन बात कैसे होती है, जैसे कि हम सामने ही बात कर रहे हों। तो पूरी प्रोसीजर है उसकी, कि जब हम मोबाइल में नंबर डायल करते हैं तो हमारे हैंडसेट से कुछ वेव्स ट्रांसमिट होती हैं टावर के द्वारा, वो दूसरे सेट तक पहुंचती हैं, फिर वही प्रक्रिया होती है और हमारा सेट उसको कैच करता है और इस तरह से हम बात करते हैं। हम रिमोट यूज करते हैं ना, एसी चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, कार को ऑन करेंगे तो दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है लेकिन फिर भी चीजें ऑपरेट हो रही हैं। तो ऐसे ही जब हम विचार करते हैं, जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो हमारी विचार तरंगे परमात्मा तक पहुंचती हैं, जो भले ही हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। और न सिर्फ पहुंचते हैं लेकिन उनकी शक्तियों को भी हम अपने में ग्रहण करते हैं। तो ये योग टू वे कम्युनिकेशन है कि न सिर्फ हम याद कर रहे हैं लेकिन भगवान की शक्तियों को भी, उनके गुणों को भी हम अपने में ग्रहण कर रहे हैं। हम मंदिर में जाते हैं और मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो हमें पता है कि मूर्ति तो जड़ है, मूर्ति तो नहीं सुनती है, लेकिन फिर भी हम मूर्ति से बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि पता है कि भगवान जहां भी है उस तक मेरे मन की बात पहुंचेगी। तो हम अपने भाव व्यक्त करते हैं और मानो वो हमारी भावनाएं पूरी हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं? भगवान ने मेरी सुन ली। तो कैसे सुन ली? मन ही तो माध्यम बना। तो इसीलिए मन माध्यम है हमारा ईश्वर से मिलन मनाने का, ईश्वर से संबंध अनुभव करने का। ऐसे ही राजयोग कर्म योग है। कर्म योग है अर्थात कर्म करते हुए ईश्वर की याद। तो राजयोग में केवल हम बैठकर अभ्यास नहीं करते लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, जो हम अपने दैनिक कर्म करते हैं इसमें भी हम मन को ईश्वर में लगा सकते हैं क्योंकि हमेशा हमारा मन व्यस्त नहीं होता है। और कई कार्य तो ऐसे होते हैं जिनके हम इतना व्यस्त होते हैं कि हमारे हाथ काम करते हैं, मन कुछ और सोचता रहता है। तो ऐसे समय पर हम अगर मन को ईश्वर में लगाते हैं तो वो कर्म सत्कर्म हो जाते हैं। सत्कर्म माना एक का पदम गुना फल देने वाले, क्योंकि परमात्मा की याद उन कर्मों को उतना श्रेष्ठ बना देती है। तो ये आम के बीज बोने की तरह है ना। नॉर्मली हम कहते हैं एज यू सो सो यू रीप, आप जो बोएंगे वही काटेंगे या जो करेंगे वही पाएंगे। लेकिन आम का बीज बोना मतलब अगर हमने एक बीज बोया तो फिर थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ता है लेकिन फल मिलेगा तो फिर इतना कि हम ही नहीं खाएंगे, हमारी पीढ़ी भी खाती है, तो अनगिनत। तो ऐसे योग के फल की प्राप्ति है कि हम वर्तमान में ही उसका फल अनुभव नहीं करते लेकिन जन्म जन्मांतर तक हमें उसकी प्राप्ति होती है, वो प्रारब्ध हमें मिलती है। तो ऐसा राजयोग कर्म योग है, राजयोग भक्ति योग है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? परमात्मा के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव। जो भक्तों में, जो सच्चे भक्त होते हैं उनमें वो ईश्वर के प्रति भाव होता है और वो संबंधों से होता है। ईश्वर से हमारे सर्व संबंध है। हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सेवा तुम्हारे, गाते हैं ना, या त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो जब हम सर्व संबंधों का ईश्वर के साथ अनुभव करते हैं, हम कहते हैं कि वो उसकी ही शक्ति है कि ही इज ऑल इन वन। मनुष्य सर्व संबंधी नहीं हो सकते। माता अलग, पिता अलग, बहन अलग, भाई अलग, पति अलग, पत्नी अलग, बच्चे अलग, दोस्त अलग, सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो दिल बटी हुई होती है लेकिन एक ईश्वर में ही वो शक्ति है कि हम एक में ही सर्व संबंधों का अनुभव कर लेते हैं। तो जो संबंध हमें प्रिय है परमात्मा से, जैसे कई भक्तों ने भगवान के साथ उस विशेष संबंध से उसे याद किया। प्रहलाद ने उसे पिता के रूप में याद किया, मीराबाई ने उसे पति के रूप में याद किया, अर्जुन ने उसे सखा के रूप में याद किया, और जिसने जिस तरह से याद किया, समय आने पर भगवान ने उसी तरह से उस संबंध को निभाया। तो राजयोग में भी परमात्मा को हम सर्व संबंधों से याद करते हैं, और विशेष जो संबंध हमें उनके साथ प्रिय है, पिता है, खुदा दोस्त है, साथी है, जो संबंध प्रिय है उस संबंध से हम उन्हें याद करते हैं। ये संन्यास योग भी है। अब संन्यास का अर्थ क्या है? भारतीय संस्कृति में घर बार छोड़कर जंगल में बैठ जाओ, तीर्थ पे बैठ जाओ, भगवान की याद में अपना जीवन बिता। तो फिर हम तो सांसारिक हैं, हमारे कर्म हैं, जिम्मेवारियां हैं, संबंध हैं, तो भगवान हमें ऐसा संन्यास नहीं सिखाते। वो हमें कौन सा संन्यास सिखाते हैं? अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए हम बुराइयों का संन्यास करें, विकारों का संन्यास करें। तो ये विकार वैसे भी हमें दुख देने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये हमारे जीवन में विष खोलते हैं। उन्हें हम छोड़ना ही चाहते हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं, विधि नहीं पता कैसे हम इनको छोड़ें। तो परमात्मा हमें वो विधि बताते हैं कि कैसे हम इन विकारों का त्याग कर सकते हैं इस संसार में रहते हुए भी। और ये संन्यास उस संन्यास से भी महान संन्यास है। कोई सन्यासी हो गया और विकारों को नहीं छोड़ पाए, वो भी हम देखते हैं, तो फिर वो सन्यास को बदनाम करते हैं। आज कितने संतों को जेल जाना पड़ा, तो क्यों जेल जाने की नौबत आई? क्योंकि भले ही सन्यासी हो गए, लेकिन विकार नहीं छूटे, काम नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा, तो वो सन्यासी व्यर्थ हो जाता है। लेकिन सच्चे अर्थों में संन्यास वो है जब संसार में रहते हुए हम इन बुराइयों पर विजय पाते हैं। और ये समत्व योग है। समत्व योग का अर्थ है स्थिरचित होना, यानी हर परिस्थिति में, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख से हमारा जीवन गुजरता है। कभी हम सफल होते हैं, कभी हम असफल होते हैं, कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हमारी प्रशंसा होती है, कभी हमारी निंदा भी होती है। तो जो एक योगी है वो दुख में, असफलता में बहुत दुखी नहीं होता, और सुख में, सफलता में, अहंकार में भी नहीं आता है, क्योंकि हर स्थिति परिवर्तनशील है। ना सुख सदा रहने वाला है और ना ही दुख सदा रहने वाला है। तो योग की शक्ति से हम अपनी भावनाओं को बैलेंस कर पाते हैं, वो इमोशनल स्टेबिलिटी हमारे अंदर आने लगती है। तो हम कहते हैं ये राजयोग की सिद्धि है। ऐसे ही राजयोग हठ योग भी है। हठ योग भक्ति में हठ करते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, कोई विशेष व्रत का पालन करते हैं या कोई साधना करते हैं। कोई कहते हैं कि अगर देवी मेरी ये मनोकामना पूरी करेगी तो हम नंगे पैर पैदल चलकर उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे। जो भी, मतलब एक कठिन कोई ना कोई भगवान से व्रत कर लेते हैं। लेकिन राजयोग में हम इस प्रकार का व्रत नहीं करते, लेकिन प्रतिज्ञा, हठ माना दृढ़ता, प्रतिज्ञा। तो परमात्मा से प्रतिज्ञा करके हम परिवर्तन करते हैं। जैसे वो व्रत रखते हैं, तो फिर व्रत के दिन अगर कोई खाना ले आए उनके सामने तो क्या कहेंगे? आज नहीं, आज मेरा व्रत है, चाहे कितना ही स्वादिष्ट खाना क्यों ना हो। तो हम ने व्रत लिया, आज सारा दिन जो भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है। मानो तो कई बातें आ सकती हैं हमारे सामने जो गुस्सा दिलाने वाली होंगी। कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कोई गलती करेगा, कोई झूठ बोलेगा, हो सकता है कोई मिसबिहेव करे, लेकिन क्योंकि आज मैंने व्रत लिया है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है तो हम नहीं करते। और एक दिन हमने अपनी इस कमजोरी को जीत लिया तो आगे के लिए हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस तरह से हम स्वयं में परिवर्तन ले आते हैं। अब हम जो भगवान को याद करते हैं ना, हम तो सभी भगवान को मानते हैं, भारत में तो कोई नास्तिक नहीं होते। कोई है आप में से नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता है? सभी मानते हैं। तो हम अपनी अपनी विधि से भगवान को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कोई मूर्ति रखते हैं अपने घर में, चित्र रखते हैं, और रोज नियम से दिया बाती करेंगे या स्तुति करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और हमारा भाव क्या होता है, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, भाव यही होता है। कोई विशेष दिन होते हैं तो हम मंदिरों में दर्शन करने के लिए भी पहुंच जाते हैं कि आज का दिन भगवान की विशेष आशीर्वाद हमें मिलेगी। फिर भले ही वो हमें धक्के खा के दर्शन करने पड़े, लेकिन ये हमारी विधि है। तो परमात्मा से जो एक संबंध का अनुभव होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। और भी स्थूल आधार हम लेते हैं, माला जपते हैं कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं। तो माला जाप के लिए कबीर दास जी ने कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर ना। तो हाथ में तो मन के फेरने लग जाते हैं, लेकिन मन भगवान में लगता नहीं, तो मन भी घूमता रहता है, माला भी घूमती रहती है। ऐसे ही होता है, भले राम 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 करेंगे, मुख राम राम कर रहा है या जो भी शिव शिव कर रहा है, जो भी जाप करना है, लेकिन मन भी अपना काम कर रहा है। तो वास्तव में तो मन को लगाना है ना, केवल हाथ के मन के फिराने की बात नहीं, वो तो आपने एक साधन लिया। फिर मंत्र भी जपते हैं, कोई गुरु हमें मंत्र देते हैं, या कोई जीवन में संकट आता है, कोई ज्योतिषी हमें बताते हैं ये मंत्र जाप करो, इतनी बार मंत्र जाप करो। अब मंत्र होते हैं संस्कृत में, और संस्कृत हमारी भाषा है नहीं, तो हमें मंत्रों के अर्थ ही पता नहीं होते, तो हमारे भाव भी नहीं जुड़ते। आज गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सः सत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब कितनों को इसका अर्थ मालूम है? एक जना। तो हमें मंत्र के अर्थ ही पता नहीं होते। मानो हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव की भक्ति करते हैं, वो कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो हमें यही पता नहीं ओम मना मैं कौन हूं, और अर्थ है इसका मैं शिव को नमन करती हूँ। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूँ या करती हूँ। तो मुझे ये भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ जो शिव को नमन कर रही हूँ, और फिर ये भी पता नहीं कि शिव कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उनसे हमारा संबंध क्या है। तो क्या हमारा नमन शिव तक पहुँचता है? और फिर मंत्र क्या है? मंत्र संस्कृत शब्द है, मंत्र का अर्थ होता है सलाह देना, जैसे मंत्री माना सलाहकार, मंत्रणा माना भी सलाह। तो मंत्र माना हम अपने मन को सलाह देते हैं कि ए मन तुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। तो राजयोग में कोई हम संस्कृत मंत्रों का जाप नहीं करते, वो आपको नहीं बताया जाता कि ये मंत्र का जाप करना है। क्या कहा गया, कौन सा चिंतन करता है? जो मुझे ज्ञान मिला, आध्यात्मिक ज्ञान मिला, समझ मिली, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मेरा निजी स्वरूप क्या है, तो वो हम मन को सलाह दे रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि पर आई हूं, मेरे पिता परमात्मा कौन है। तो वही एक मंत्र का काम करता है। और इसीलिए कहते हैं कि शांति हमसे एक संकल्प की दूरी पर है, कि जब हमने शांत स्वरूप की स्थिति में मन को स्थित किया तो मन शांत हो जाता है। और मंत्र माना होता है जो मन को मुक्ति दे, मन प्लस त्र, त्र माना मुक्त होना, तो मन को जो अशांति से मुक्ति दे। तो हम देखते हैं कई बार जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है, क्योंकि सांसारिक बातों से मन थोड़ा समय के लिए डिटैच होकर के मंत्र में आ गया। लेकिन फिर हमें ये सोचना होता है कि 108 बार जपना है, 1008 बार जपना है, कई बार तो 1,00,000 बार भी जपने के लिए बोलते हैं। अब योग कहाँ लग रहा है, 108 बार हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने गिनती से योग लगाना शुरू कर दिया, तो भगवान से हमारा योग नहीं लग पाता। ये सारे स्थूल साधन हमारे सूक्ष्म मन को ईश्वर की ओर नहीं ले जा पाते। तो इसलिए जो सूक्ष्म मन है उसको सूक्ष्म आधार चाहिए। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, किसी भी मनुष्य को हम याद करते हैं, है ना। योग माना यहाँ परमात्मा की याद, कोई कठिन क्रियाएं नहीं है। कोई आपको कठिन आसन लगाना है, जैसे कहा कठिन मंत्रों का जाप करना है, नहीं, लेकिन ये एक याद है। और किसी भी मनुष्य को, जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है तो सहज याद है, क्यों, क्योंकि उसको पिता से संबंध है, स्नेह है, वो संबंध और स्नेह और प्राप्ति से वो याद है। तो मनुष्यों को याद करने के जो आधार हैं वही परमात्मा के लिए भी हम यूज करते हैं, कि मनुष्य से हमारा परिचय होना चाहिए, बिना परिचय के तो संबंध नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो जैसे दुनिया में भी जिससे हमारा परिचय नहीं है उसको हम याद कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो परमात्मा से हमारा परिचय हुआ। अब तक भी हम उसे याद करते थे लेकिन सत्य परिचय नहीं था परमात्मा का, तो अभी परिचय मिला, मिला कि नहीं मिला, तो कौन है, क्या नाम है, परमात्मा का नाम क्या है, शिव बाबा, कहाँ रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। तो जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं, अगर कुमार कुमारी शादी की आयु में हैं, उनका संबंध तय होना है, तो मन भटकता है कौन होगा कौन होगा। लेकिन जब संबंध तय हो जाता है, एंगेजमेंट हो जाती है, तो बुद्धि स्थिर हो जाती है, फिर मन नहीं भटकता है। तो यहां भी परमात्मा से हमारा परिचय हो गया, हमें पता है वो कौन है, कहाँ है और क्या संबंध हम रखते हैं उनसे, तो अब मन एकाग्र होना सहज है। और संबंधों का भी ज्ञान हो गया कि सर्व संबंध है हमारे भगवान के साथ, और स्नेह है परमात्मा से, क्योंकि अनादि संबंध है, कोई एक जन्म का संबंध नहीं है, कोई हम नया संबंध जोड़ने नहीं जा रहे, आत्मा और परमात्मा का अनादि संबंध है। ये शरीर के संबंध तो बदलते रहते हैं, जन्म बदलता है तो ये सारे संबंध बदल जाते हैं, लेकिन ईश्वर से आत्मा का संबंध सदा ही है, और परमात्मा से हमें प्राप्तियां भी होती हैं। तो संबंधों में जो याद होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है हम याद करते हैं, दूसरा है हमें याद आती है, और तीसरा हमें याद सताती है। तो हम याद करते कब हैं, जब हमारा काम होता है किसी से, स्वार्थ है, ये मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, या फिर कोई अवसर है और हमें निमंत्रण देना है तो हम पूरी लिस्ट बनाते हैं, याद करते हैं कि इन सबको बुलाना है, और रह गया तो कहीं ये नाराज ना हो जाए, तो याद करते हैं। दूसरा, याद आती है उनकी जो हमारे प्रिय होते हैं, यानी जिनसे हमें स्नेह होता है, उनको हम याद करते नहीं, अपने आप उनकी याद हमें आती है। और याद सताती है यानी दुख देने वाली याद, जब भी हम याद करेंगे तो दुखी होंगे। तो किनको याद करके हम दुखी होते हैं, जो हमसे सदा के लिए अलग हो गए, या तो मृत्यु हो गई, पता है कि जो चला गया वो लौट कर आने वाला नहीं है, तो जब भी उनको याद करेंगे मन दुखी हो जाएगा, या फिर कोई धोखा देकर के सदा के लिए अलग हो जाता है, मानो संबंधों में ऐसे होते हैं, संबंध टूट जाते हैं, फिर उनको याद करेंगे तो मन दुखी ही होगा। या कोई विदेश में रहता है बेटा किसी का, और माँ यहाँ उसको याद करके दुखी होती है क्योंकि विदेश तो नहीं जा सकती, पता नहीं वो ठीक से रह रहा होगा, पता नहीं वो ठीक से खाता होगा, यानी ये याद है दुख देने वाली याद। परमात्मा की याद, इन तीनों याद में से कौन सी होनी चाहिए? हम याद करते हैं, हमें याद आती है या याद सताती है? तो जो समझते हैं हम याद करते हैं वो हाथ उठाएं। याद करते हैं, अच्छा। और जो समझते हैं हमें याद आती है, आती है, अच्छा। और जो समझते हैं याद सताती है, नहीं, समझ गए कि भगवान की याद दुख देने वाली याद नहीं है। कभी भी हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमें सुख मिलता है, उसको कहते हैं अतिंद्रिय सुख। तो वो सुख दाता है, वो कभी भी हमें दुख नहीं देते, इसलिए उनकी याद दुख देने वाली नहीं। लेकिन उनकी याद आनी चाहिए, इतना समीप स्नेह संबंध हमारा ईश्वर के साथ होना चाहिए कि उनकी याद हमें आए। लेकिन हम याद करते हैं, एक्चुअली में हमें आती नहीं है क्योंकि भगवान से उतना समीप संबंध हमारा नहीं है। अच्छा, हम आपसे एक एक्सरसाइज कराते हैं। आप उनको याद करो जिनको आप सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं। दुनिया में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो हमारे सबसे क्लोज होता है, तो आप उसको मन में लेकर आइए कि वो कौन है। अब फिर से उसके नेक्स्ट कौन है आपके जीवन में जो आपको प्रिय है? और फिर उसके भी नेक्स्ट थर्ड नंबर पर कौन है? अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं कि इन तीन श्रेणी में किसके उसमें परमात्मा आए, जिसने इन तीन प्रिय में परमात्मा को याद किया वो हाथ उठाए। तो देखिए गिनती के हैं, है ना? तो इसका मतलब भगवान से हमारा उतना समीप संबंध, उतना प्रेम हमारा ईश्वर के साथ नहीं है। तो वर्तमान में हम भगवान को याद करते हैं, करते हैं माना जब हमारा स्वार्थ होता है तब हमें भगवान याद आता है। चाहे हमारे जीवन में कोई दुख आता है, कष्ट आता है, या फिर हमें अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है, तो हम भगवान को याद करते हैं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें ना कोई। तो फिर एक स्टूडेंट है, उसे एग्जाम में पास होना है, भगवान मुझे पास करा देना। हाँ, फिर पास हो गए, भगवान एक अच्छी नौकरी लगवा देना। अच्छा, नौकरी लग गई, अब अच्छे घर में शादी करवा देना। अच्छा, शादी हो गई, अब एक अच्छा घर होना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम? जब भी उनके सामने जा रहे हैं कोई ना कोई हमारी मांग है, और सिर्फ मांगते नहीं है, सौदा भी करते हैं। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ, जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे या जितना हम कर सकते हैं भगवान के लिए, जो हमारी क्षमता है हम वो कह देते हैं। अब मेरी इच्छा पूरी हो गई तो भगवान को प्रसाद मिलेगा, नारियल मिलेगा, और अगर नहीं हुई तो अब हम क्या कर रहे हैं? भगवान को इंसान की श्रेणी में ला रहे हैं। हम देखते हैं कि इंसान बिना लेन देन के काम नहीं करता, तो क्या भगवान को भी बिना लेन देन के भगवान हमारा काम करेगा, नहीं करेगा? यही समझते हैं ना हम, कुछ लेन देन करनी पड़ेगी तब। और जब हम भगवान से मांगते हैं तो तुलसीदास जी ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। बिना मांगे मोती भी मिलते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिलती। तो हम अनुभवी हैं अपने जीवन में, हमारे सामने कोई भिखारी आता है तो हमें पसंद आता है, अच्छा लगता है कोई भीख मांगते हुए, नहीं अच्छा लगता, हमें लगता है ये काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। और अगर समझो कोई सचमुच हमें दया का पात्र लगता भी है कि भाई हाँ ये अपंग है और इसको मिलना ही चाहिए, तो भी हम कितना देते हैं, मेरे पॉकेट में जो सबसे छोटा नोट होगा वो निकाल करके हम देते हैं। तो भगवान के सामने खड़े होकर हम मांगते हैं तो क्या भगवान हमें जज नहीं करेगा कि हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हमारे कर्मों के अनुसार वो प्राप्ति हमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए तो होगी, नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगी। तो राजयोग में इसलिए हम भगवान से मांगते नहीं हैं, हाँ हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम उस ईश्वर की संतान हैं, तो हम अधिकारी हैं, हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे बच्चों को माँ बाप से मांगना नहीं पड़ता है, माँ बाप स्वयं ही बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें पता है कि उनका भविष्य क्या बनाना चाहिए, उनको कहाँ पढ़ाना है, उनको हमें क्या भोजन देना है, कौन चिंता करता है, कौन चिंता करता है, माँ बाप चिंता करते हैं ना, आप लोग सब फैमिली में रहते हैं तो बच्चे चिंता करते हैं, माँ बाप करते हैं। तो जब वो हमारा मात पता है और हमने ये संबंध अनुभव किया ईश्वर के साथ कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमें उससे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, हमारी आवश्यकताएं स्वतः ही पूरी होती हैं। फिर दूसरा जो संबंध है का आधार, जैसे कहा हमारा स्नेह से समीपता, और उसका आधार है समानता। जितनी समीपता होगी उतनी याद आएगी, याद करने की बात नहीं, लेकिन वो समीपता हम कैसे अनुभव करेंगे? तो तीन आधार हैं उसके, परमात्मा से समानता अनुभव करने के। उस ईश्वर के साथ हमारी तीन समानताएं हैं। पहली है स्वरूप की समानता, दूसरी है धाम की समानता, और तीसरी है गुणों की समानता। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं जिससे हमारे विचार समान होते हैं उनसे हमारी दोस्ती जल्दी हो जाती है। अगर कोई शादी भी करेंगे ना तो वो कुंडली मिलाते हैं, तो फिर क्या देखते हैं, इनके ग्रह नक्षत्र मिलते हैं, इनके गुण मिलते हैं। तो अगर मिलते हैं तो योग है, तो कहते हैं योग है, और अगर नहीं मिलते तो ये शादी टिकेगी नहीं। तो क्या देख रहे हैं, समान है या नहीं। ऐसे ही डॉक्टर डॉक्टर मिलेंगे तो बहुत जल्दी दोस्ती हो जाएगी क्योंकि सेम प्रोफेशन है। बिजनेसमैन मिलेंगे तो बहुत जल्दी उनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो समानता के आधार पर समीपता होती है। तो ऐसे परमात्मा से भी हमारी स्वरूप की समानता है, आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन परमात्मा सदा ही निराकार है। आत्मा तो शरीर लेती है, शरीर लेकर कर्म करती है, तो आत्मा पर ये शरीर एक आवरण है। तो जब हमें परमात्मा को याद करना है तो हमें भी उनके समान निराकारी स्थिति यानी उस ज्योति स्वरूप की स्थिति में अपने मन को ले जाना होता है, यानी हमारी फ्रिक्वेंसी उनकी फ्रिक्वेंसी के समान हो, तब हमारा कनेक्शन होगा। जैसे अगर हम FM रेडियो सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। अगर उस ट्रांसमिशन पे मेरे सेट की फ्रिक्वेंसी है तो हम सुन पाएंगे, और नहीं तो हम कितनी भी कोशिश कर लें सुन पाएंगे, अपना मनपसंद स्टेशन हम नहीं सुन पाएंगे। तो परमात्मा जिस फ्रिक्वेंसी पर है वो निराकारी स्थिति में है, तो मेरे मन की स्थिति भी निराकारी होनी चाहिए। इसीलिए हम आत्मचिंतन करते हैं। आपने दो दिन से आप अभ्यास कर रहे हैं राजयोग का, तो पहले हम मन की स्थिति को कहाँ ले जाते हैं, इनिशिएशन है सोल कॉन्शियसनेस, हम अपने मन को आत्मिक स्थिति में ले जाते हैं, इस देह से अपने आप को नियारा करते हैं। जैसे कहा दो तारों के बीच में करंट फ्लो करना है, हमें उन्हें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, रबड़ हटाएंगे, तार से तार को जोड़ेंगे, तार को रबड़ से जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होगी नहीं फ्लो होगी। तो ऐसे ही देह रूपी आवरण से मन को न्यारा करना होगा, अपने देह से न्यारा करेंगे तब परमात्मा की करंट, वो शक्ति हमारे अंदर फ्लो होगी। तो ये राजयोग की विधि है। इनिशिएशन प्रारंभ हम आत्मचिंतन से करते हैं। फिर दूसरी समानता है धाम की समानता। परमात्मा परम धाम में रहते हैं और हम आत्माएं भी कहां की रहने वाली हैं? तो हमारा घर एक ही है, वैसे भी पिता और बच्चों का घर एक ही होता है, तो हम एक ही धाम के रहने वाले हैं, तो एक ही घर, वही हम बहुत समीप हैं, साथी हैं। जैसे मानो आप यहाँ आए और आपको कोई यहाँ मिलता है जो पता चलता है आपके ही शहर का रहने वाला है, आपके शहर का क्या, आपकी सोसाइटी का ही रहने वाला है, तो आपको कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, नहीं लगता है? और कितना जल्दी हम उसके क्लोज हो जाएंगे, जितना अपनापन उससे लगेगा और दूसरों से नहीं लगेगा, क्योंकि समानता है। मेरे ही शहर के, मेरे ही सोसाइटी के, मुझे ही नहीं पता, अभी तक नहीं पता था, अच्छा आप वहां के ही रहने वाले हो। तो हम परमात्मा के धाम के ही निवासी हैं, और फिर वो वहां रहते हैं तो हम उन्हें याद करेंगे, तो हमारा मन कहां जाएगा, कहां जाएगा? किसी को भी हम याद करते हैं, मानो आपका फ्रेंड दिल्ली में रहता है या आपके पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, और आप उनको याद करते हैं यहां बैठे हुए, तो मन कहां जाएगा? कहां जाएगा? वो जहां रहते हैं वहीं जाएगा। तो शिव बाबा परम धाम में रहते हैं और यहां बैठे हम उनको याद कर रहे हैं, तो मन कहां जाएगा? तो इसीलिए राजयोग में हम मन को परम धाम में ले जाते हैं। हम उनको यहां भी याद कर सकते हैं, जैसे किसी से हम मिलते हैं, हम उनके स्थान पर चले जाएं या उनको हम अपने स्थान पर बुला लें, लेकिन अगर हम यहां भगवान को याद करेंगे तो इस दुनिया में तो हमारा मन इतना उलझा हुआ है कि हम उसे याद ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम मन को डिटैच करके परम धाम में, जो शांति धाम है, जो इस दुनिया की सब बातों से परे है, उस धाम में मन को ले जाते हैं, तो हम सचमुच परमात्मा में मन को एकाग्र कर पाते हैं और हम उनका अनुभव भी कर पाते हैं। इसलिए हम परमात्मा को परम धाम में याद करते हैं। बाकी कर्म योग के समय हम मन को वैसे भी परमात्मा को कहीं भी याद कर सकते हैं। फिर तीसरी समानता है ईश्वर के साथ गुणों की समानता। जिन गुणों में भगवान सागर हैं, उन गुणों में आत्मा स्वरूप है, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं तो उनके गुणों के ही हम वंशज हैं। वो शांति के सागर हैं तो हम शांत स्वरूप हैं, वो प्रेम के सागर हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, वो आनंद के सागर हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, वो सर्वशक्तिवान है, आत्मा शक्ति स्वरूप है। पर आत्मा क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आ रही है, कर्म फल में आ रही है, तो ये हमारे गुण कम ज्यादा होते रहते हैं, परसेंटेज में आते रहते हैं, कभी हम शांत हैं, कभी हम अशांत हैं, जैसे कहा कभी हम सुखी हैं, कभी हम दुखी हैं, लेकिन परमात्मा सदा ही उन गुणों का सागर है। तो राजयोग में परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हुए, इन गुणों का चिंतन करते हुए, इसको ही मेडिटेशन कहते हैं, और फिर हम उसको अनुभव करते हैं, तो वो गुण हम स्वयं में भी अनुभव करने लगते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में भी हम क्या कर रहे होते हैं? भक्ति में हम क्या करते हैं? भजन, कीर्तन, स्तुति, जो भी हम करते हैं तो उसमें महिमा करते हैं, भगवान की महिमा करते हैं, उनके वो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, जो भी कृपा निधान है, हम वो वर्णन करते हैं, तो हम वहां पर मुख से करते हैं और साजों और बाजों का भी प्रयोग करते हैं, माना ढोल बजाएंगे, बाजा बजाएंगे, तो क्या होता है, शक्तियां बाह्य मुखी हो जाती हैं। खुशी होती है जब हम वो भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन शक्तियां बाह्य मुखी हो रही हैं तो परिवर्तन नहीं आता, जीवन वहीं का वहीं रहता है। लेकिन राजयोग में भी हम परमात्मा के गुणों का ही स्मरण कर रहे हैं, उनका ही चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई अवगुण तो है ही नहीं, तो उनको याद हम करेंगे कैसे करेंगे, किसी व्यक्ति को हम क्यों याद करते हैं? दो बातें होती ना, उसकी कोई बात हमें बहुत अच्छी लगती है, है ना, कुछ अच्छा लगता है, या उनसे हमें कुछ प्राप्ति हो रही है। ये दो ही चीजें किसी इंसान की तरफ मन को ले जाती। भगवान से भी हमें, वो तो सदा गुणों का सागर है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है, और साथ में जितना याद करते हैं उतनी प्राप्तियां भी हैं ईश्वर से हमको। तो हम याद करते हैं लेकिन मांगते नहीं हैं। कोई कहते हैं अच्छा बहन जी, संसार की भौतिक चीजों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, वो हम नहीं मांगते, लेकिन शांति और सुख मांगते हैं, वो नहीं है। यही कहते हैं ना लोग कि जीवन में बस शांति ही नहीं है, सुखी नहीं है, सब कुछ है लेकिन, तो क्या कहेंगे, मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? जी परमात्मा को मांग लो। तो मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सागर है, वो स्वयं ही दाता है। जब हम मन को ईश्वर के पास ले जाते हैं, जैसे मानो आप आग के पास बैठे हो तो आपको गर्मी मांगनी पड़ती है, अपने आप मिलती है ना, क्योंकि उसका गुण है, वो दे ही रहे हैं। आप फूलों के बगीचे में जाएंगे, खुशबू मांगते हैं क्या? खुशबू मिल ही रही है, अपने आप वो खुशबू आ रही है। आप सागर के किनारे जाएंगे, हवा मांगते हैं क्या? सागर का गुण है और वो हवा हमें अपने आप अनुभव होती है। तो हम भगवान के पास उसके संग में हैं, उसके साथ में हैं, और वो सागर है, क्या हमें मिलेगा? नहीं, मांगने की जरूरत ही नहीं, अपने आप हम उसको अनुभव करने लगते हैं, वो शांति, वो सुख, वो शक्ति मन को मिलने लगती है। और इसीलिए ये भी हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो राजयोग जब हम करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं आत्मचिंतन से, जो बताया आपको, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। अब एकदम मन नहीं लग जाता है, क्योंकि हमारे मन को दिशा देने का अभ्यास हमें है ही नहीं। तो हम सोचेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और दूसरा विचार क्या आएगा, अभी यहाँ से बाहर जाना है, बाहर जाके नाश्ता करना है, फिर घूमने जाना है, जो भी, मतलब कोई भी आपकी जो प्लानिंग है वो शुरू हो जाएगी। फिर आप सोचेंगे अभी तो मैं योग करने बैठी हूँ, तो अभी फिर से मन को लेकर आएंगे और फिर शुरू करेंगे, फिर कोई बात आ जाएगी, कोई काम याद आ जाएगा। तो कई बार हम अंतर्द्वंद में फंसे होते हैं, सोच रहे हैं आत्मचिंतन परमात्म चिंतन के बारे में, और मन जा रहा है इधर उधर इसकी उसकी बातों में, तो कई बार दिमाग ही भारी हो जाता है। फिर सोचते हैं योग करने बैठे लेकिन योग तो लगा नहीं, और ही सिर भारी हो गया। फिर कई सोचते हैं बार बार योग लगाते हैं, योग लगता नहीं, टाइम वेस्ट होता है, इससे तो कुछ काम ही कर लो, है ना, क्या क्या हम, क्योंकि हमें इतना कठिन लगता है वो, क्योंकि मन एकाग्र हो ही नहीं रहा, कुछ अनुभव हो ही नहीं रहा। तो कोई भी काम जब हम जीवन में शुरू करते हैं, ये तो सूक्ष्म मन है जिसकी गति इतनी तेज है, है ना, उसको एकाग्र करना मुश्किल तो है, तभी तो साधना कहते हैं। साधना माना मन को साधना, मन को एक सीधी दिशा में ले पाना, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। अब दुनिया में कोई फिजिकल काम भी जब हम नया शुरू करते हैं तो क्या हम एक्सपर्ट हो जाते हैं? मुश्किल लगता है ना शुरू में। आप ड्राइविंग सीखते हैं, एक दिन में ड्राइविंग सीख जाते हैं, समय लगता है, आप अभ्यास करते रहते हैं, रोज रोज उसका अभ्यास करते हैं, तब जाकर के महीने में कभी और भी उससे ज्यादा टाइम लग सकता है, जब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप रोड पर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। कोई दीवार को तोड़ना है, उसको तोड़ने के लिए 100 हथौड़े लगाए, 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटी तो क्या 99 हथौड़े बेकार गए? क्या कहेंगे, हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया और 100वें हथौड़े में जाकर के वो टूटी। तो यहां भी ऐसा ही है कि एक बार में मन नहीं लगा, दो बार में नहीं, दस बार में भी नहीं लगा, इधर उधर जाता है मन, लेकिन जब हम अभ्यास करते रहते हैं, इसलिए कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो फिर कोई टाइम ऐसा आएगा जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा और वो अनुभूति हमें होगी। जैसे आप में से कईयों ने हाथ उठाया, अभी बहन ने पूछा ना कि किसको योग का अनुभव हुआ, तो अनुभव हुआ ना तभी हाथ उठाया। तो एक मिनट भी अगर हमें वो शांति का अनुभव हुआ, वो आनंद का अनुभव हुआ, तो अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम अपने आप टाइम ढूंढते हैं कि कब हमें समय मिले और हम फिर से योग का वो अनुभव करें। तो ये अभ्यास की बात है और इसलिए हमें निराश नहीं होना है कभी भी और अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना है, हम नियमित रखें उसे और हमें योग के अच्छे अनुभव होने लगेंगे और उसके लाभ भी हम अपने जीवन में अनुभव करने लगेंगे। फिर दूसरी स्टेज है मेडिटेशन। मेडिटेशन माना हम परमात्मा को परम धाम में उस स्वरूप में देखते हुए, उनके ज्योति स्वरूप में, वो परम ज्योति है, परम ज्योति स्वरूप में हम मन रूपी चक्षु से देखते हैं। ये स्थूल नेत्रों से तो भगवान को हम नहीं देख सकते, लेकिन मन भी हमारा अंतर चक्षु है, मन से देख सकते नहीं देख सकते, हाँ, तो मन से हम उनको देखते हुए उनके गुणों में अपना ध्यान लगाते हैं कि वो शांति के सागर हैं तो वो शांति का अनुभव कैसा है, वो प्रेम के सागर हैं तो वो ईश्वरीय प्रेम कैसा है, और संबंध से हम अनुभव करते हैं वो मेरे माता पिता हैं, वो ही मेरे परम शिक्षक हैं, आज ये जो भी ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं राजयोग का, ये परमात्मा ही हमें परम शिक्षक बन करके पढ़ा रहे हैं, ये सारा ज्ञान परमात्मा का स्वयं का दिया हुआ है, तो वो इस समय हमारे लिए शिक्षक भी हैं और वो सतगुरु भी हैं, वो हमारी सदगति करने वाले हैं, सद्बुद्धि देने वाले, हमारा कल्याण करने वाले हैं। तो वो अलग अलग संबंधों से हम मन के भाव ईश्वर के प्रति व्यक्त करते हैं कि परमात्मा से हमें क्या मिल रहा है, क्या अनुभूति हो रही है। तो ये मनन करते हुए, जैसे कहा सर्व संबंधों से हम अपने भाव ईश्वर के प्रति व्यक्त करते हुए उसे याद करते हैं और धीरे धीरे अब चिंतन से मन हटके अनुभूति में आने लगता है। हम महसूस करते हैं कि परमात्मा से, जैसे कहा ना, हम वो शक्तियां ग्रहण कर रहे हैं, वो गुण हमारे अंदर आ रहे हैं, ऐसी अनुभूति हमें होने लगती है। तो ये एकाग्रता की स्थिति है। एकाग्रता माना सिर्फ एक परमात्मा में ही हमारा मन है और सब बातों से हम बिल्कुल न्यारे हो गए, इस देह और देह की दुनिया से मन पूरी तरह से न्यारा हो जाता है। जैसे अर्जुन का मिसाल बताते हैं कि अर्जुन कैसा धनुर्धर था, जो लक्ष्य को उसे निशाना साधना है सिर्फ वहीं उसकी नजर होती थी। जैसे जब गुरु उनको सिखा रहे थे तो उन्होंने सबकी परीक्षा ली, क्योंकि अब सिखा रहे हैं तो परीक्षा तो लेंगे कि ये कहाँ तक निशाना लगा सकते हैं। तो कौरव पांडव दोनों ही सीख रहे थे, तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर चिड़िया रखी, मिट्टी की चिड़िया, और उसकी आंख पर निशाना लगाना था। तो सभी को बुलाया, पहले युधिष्ठिर को बुलाया, फिर कहा बताओ क्या दिख रहा है। तो बोला गुरु जी पेड़ दिख रहा है, डालियां दिख रही हैं, चिड़िया भी दिख रही है। उन्हें कहा तुमसे नहीं लगेगा। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, पूछा, तो उसने कहा सब कुछ दिख रहा है ना, वही पेड़ चिड़िया सब। गुरु ने कहा तुम भी नहीं लगा सकते। फिर तीसरे को बुलाया, मतलब भीम को बुलाया, उसने भी वही कहा, तो उसको भी हटा दिया। अब अर्जुन की बारी थी, अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा गुरु जी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा तुम तीर चलाओ, और उसने चलाया और सीधा वो आंख पर लगा। तो एकाग्रता माना सिर्फ लक्ष्य पर मेरा मन है। तो जब परमात्मा रूपी लक्ष्य, यानी जब परमात्मा के स्वरूप पर ही सिर्फ हमारा मन एकाग्र होता है, उसके तो उसकी लगन में हमारा मन मगन है, वो स्थिति जो है वो एकाग्रता की स्थिति, जो हमें अनुभूति में ले जाती है। जो कहा कि उसकी शक्तियां हम स्वयं में अनुभव करने लगते हैं और हमारी मन की स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। मानो आप योग में बैठे और आपका मन थोड़ा अशांत है, होता ही है, मन पर कई प्रभाव होते हैं, लेकिन योग में अनुभूति की स्थिति में जाते ही हमारा मन शांत हो जाएगा। मानो कोई बात को लेकर हम दुखी थे और हम योग में बैठे तो हमारा मन अनुभूति में सुख की स्थिति में आ जाएगा, वो दुख क्या था हम भूल ही जाएंगे, मन की स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। उदासी होगी तो खुशी में आ जाएगा मन, आनंद में आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि हमारा योग लगा, माना वो एक सफल योग हमने किया। और जब इस तरह से एकाग्रता वाला हम योग करते हैं तो वो योग अग्नि का काम करता है। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, कागज ऐसे ही पड़ा है तो नहीं जलता है ना, ऐसे धूप में कागज पड़ा है कुछ नहीं होता, लेकिन आपने एक लेंस लगा दिया और सूर्य की किरणें फोकस कर दी तो क्या होगा, कुछ ही मिनट में कागज जलेगा। माना वो एकाग्रता में इतनी शक्ति है कि वो फोकस होते ही इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि वो जल जाएगा। तो जब परमात्मा की शक्तियां आत्मा पर एकाग्र होती हैं तो वो आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जो भी हमारे पुराने पाप कर्म है या जो भी बुराइयां हैं वो उसमें भस्म होने लगती है और आत्मा पवित्र बनने लगती है, पावन होने लगती है, और हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लग जाती है। और ना सिर्फ हम चार्ज होते हैं लेकिन हमारे आसपास का वातावरण भी चार्ज होने लगता है। जहां भी हैं हम, घर में हैं, ऑफिस में हैं, वो स्थान का वातावरण बदलता है। आप इस स्थान पर आए, आपको फर्क लगता है दुनिया के वातावरण में और यहाँ के वातावरण में, लगता है नहीं लगता? तो ये चार्ज्ड लगता है नहीं लगता, चार्ज्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी भाई बहने रहते हैं वो योग अभ्यास करते हैं तो उनके साथ साथ उनके आसपास का ये वातावरण भी उसी एनर्जी वाला बन जाता है। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं, विधि आधार तो हमने समझा, अब विधि क्या है, कैसे बैठेंगे, क्या बैठक लेंगे, तो हम सहज बैठक में बैठते हैं। राजयोग में हम कोई कठिन आसन नहीं लगाते हैं, सुखासन या जिसको सामान्य भाषा में आलती पालती मार कर बैठना बोलते हैं, हम उस स्थिति में बैठ सकते हैं। वैसे जमीन पर बैठना बेस्ट होता है लेकिन आज जमीन पर बैठने का जमाना नहीं है। हम अगर पालती मारकर जमीन पर बैठते हैं तो क्या होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट होता है और उससे एनर्जी सर्कुलेट होती है और एकाग्रता में मदद मिलती है। इसलिए योगियों को इस तरह से आसन लगाकर बैठे हुए दिखाया जाता है। लेकिन अब कईयों को शारीरिक तकलीफ भी होती है, किसी को कमर की तकलीफ है, किसी को घुटने की तकलीफ है, आयु है, तो फिर हम तो ऐसे नहीं बैठ सकते। तो हम सहज बैठक में, जहां भी सोफा है, कुर्सी है, जो भी हमारे लिए उचित स्थान है, हम वहां बैठे और 20 मिनट से 30 मिनट तक स्थिर होकर के हम शरीर से बैठ पाए ये कोशिश करनी चाहिए। ये भी हट नहीं है कि हिलना ही नहीं है, मतलब कि अगर मक्खी मच्छर बैठा और हम उसको उड़ा भी नहीं सकते, वो भाव नहीं है स्थिर होने का। लेकिन हाँ, कोशिश करके शरीर स्थिर रहे तो मन भी स्थिर रहेगा, क्योंकि जब हम योग की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हमारे मन को नीचे ले आता है। तो ये आसन जो हम प्रयोग करते हैं और फिर आंखें खुली रखकर हमें राजयोग का अभ्यास करना है। इसमें कईयों को भ्रम होता है, इतने ध्यान तो आंखें बंद करके होता है, खुली आंखों से तो ध्यान लगता ही नहीं, मन भटक जाता है, माना जल्दी भटक जाता है, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, खुली आंख से करना है, बंद आंख से करना है? खुली आंख से राजयोग करते हैं क्योंकि राजयोग कर्म योग है। अब कर्म करते हुए हम आंखें बंद कर लेंगे तो कर्म कैसे करेंगे? हमने कहा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, अब चलते फिरते आप आंखें बंद करेंगे तो चलेंगे कैसे? पर चलते हुए हम भगवान को तो याद कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, है ना? ये तो मन को मोड़ना ही है ना, सिर्फ मन को ईश्वर की ओर ले गए तो योग हो गया। तो इसीलिए ये कर्म योग है, तो हम खुली आंखों से अभ्यास करते हैं। कई बार कहते हैं कि बंद आंख, जैसे कहा तो बंद आंख हम तब करते हैं जब हम सोते हैं। नॉर्मली जब हम सोते हैं तब आंखें बंद करते हैं, तो अगर हमने योग करते समय आंख बंद कर ली तो क्या होने वाला है? सिग्नल गया दिमाग को, आंख बंद हो गई, 5 मिनट के अंदर आप सो जाएंगे। और अगर आप थोड़ा भी थके हुए हैं तो आप निद्रा योग ही करेंगे। यहां भी कई बार हम देखते हैं, जब यहाँ योग अभ्यास कराते हैं ना, तो 5 मिनट में ही कई सो जाते हैं, है ना। कईयों की तो ट्यून भी बजने लगती है। क्यों? क्योंकि शांति की स्थिति में मन चला जाता है, तुरंत हम निद्रा योग में गए आंखें बंद की तो। लेकिन हमें क्या करना है? राज योग करना है। और जब हम आंख बंद करते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आंख बंद करके हम सोते हैं तो सपने देखते हैं, और जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो कहां कहां की बातें याद आती हैं, जो नहीं सोचनी चाहिए वो भी याद आती हैं। फिर उन बातों से मन को निकाल करके ईश्वर में लगाना लगभग असंभव होता है। और इसीलिए खुली आंख में हमें एकाग्रता का अभ्यास है। आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत तल्लीन हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, मानो आप कुछ पढ़ रहे हैं और उसमें आपकी बुद्धि पूरी तरह से है, फिर कौन निकल गया, किसने क्या बोला, आपको पता चलता है? फिर कोई पूछता है, अरे ये यहां से गया, आपने देखा? उसने कहा नहीं, आंखें तो खुली थी, क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन कहीं और है। तो मन पढ़ाई में है तो खुली आंख होते हुए भी हमने नहीं देखा। यहां भी मन यहां थोड़ी रहता है, राजयोग में कहां चला जाता है? मन परम धाम में ईश्वर के पास है। तो मन एकाग्र होते ही कौन सामने है, क्या आवाज हो रही है, हम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। तो मन की एकाग्रता की स्थिति में हमें खुली बंद आंख का कोई फर्क नहीं पड़ता। और राजयोग में हम कुछ गीत बजाते हैं, आप सुनते हैं, तो गीत हमारे भाव को बदल देते हैं। संगीत हमें एकाग्रता में मदद करता है। तो प्रभु स्मृति का गीत है तो वही भाव आ जाते हैं मन में। दुनिया में आप देशभक्ति के गीत सुनते हैं तो कौन से भाव जागृत हो जाते हैं? तो हम अगर ईश्वर की भक्ति का गीत, परमात्मा की स्मृति का गीत सुनेंगे तो सहज ही मन के भाव ईश्वर की ओर आ जाते हैं। फिर हम लाल लाइट करते हैं, तो ये थोड़ा सा वातावरण चेंज करने के लिए कि ये योग के लिए हम बैठे हैं। और दूसरा, ये परम धाम का भी रंग है, हालांकि वही रंग हम यहां नहीं बना सकते, लेकिन एक प्रतीक है। तीसरा, ये स्टॉप का भी सिग्नल है कि अभी हमें सांसारिक विचार को स्टॉप करना है, वर्ल्डली थॉट्स नहीं चलाने हैं। कौन से थॉट्स चलाने हैं? स्पिरिचुअल थॉट्स चलाने हैं। तो अभी हम एक लक्ष्य को लेकर के बैठे हैं तो वो हमें उसमें मदद करता है। और लाल रंग शक्ति का भी प्रतीक है, योग में हमें वो शक्ति की अनुभूति होती है। तो ये स्थूल आधार विधि है, पर जरूरी नहीं है कि आवश्यक है। शुरुआत में क्योंकि हमारी एकाग्रता सहज नहीं होती है तो उसे बढ़ाने के लिए हम इनकी मदद लेते हैं, लेकिन जब हमें योग का अभ्यास हो जाता है तो फिर गीत बजे ना बजे, लाइट हो ना हो, वो हम बैठक में बैठे हैं या नहीं बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कभी भी कहीं भी भगवान में मन को लगा सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। तो अभी इस विधि से ही हम 5 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे कहा गया आपका समय नेक्स्ट सेशन भी है, तो आप सभी सीधे होकर के बैठेंगे और 5 मिनट के लिए आज जो हमने विधि समझी उस विधि से हम आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन में मन को ले जाएंगे। तो कोशिश करेंगे, हो सकता है मन इधर उधर जाएगा जैसे कहा आपको, लेकिन उन्हीं विचारों में आप अपने मन को रखें जो आपको दिए जाएंगे। अपने मन को समेट लें, आसपास के व्यक्तियों से, वातावरण से, मस्तक के मध्य में मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, एक चमकते हुए सितारे के समान मैं अचर अमर अविनाशी हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं अपने कर्म कर रही हूं। मैंने शरीर का आधार लिया है, मैं आत्मा अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप हूं। शांति मुझे पसंद है, शांति में ही शक्ति है। शांति में ही सुख समाया है। मैं परम धाम निवासी हूं, जहां मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा भी निवास करते हैं। ले जाए मन को इस भौतिक जगत से पार उस दिव्य प्रकाश के लोक में, जहां मेरा निज धाम है। शिव बाबा आप शांति के सागर हो, आपके सानिध्य में आपकी याद से मेरा मन शांत हो रहा है। आप सर्वशक्तिवान हैं, मैं स्वयं में ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हूं। और जब परमात्मा शक्तियां मेरे साथ हैं तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। आप ही मेरे सच्चे माता पिता हैं, सद्गुरु हैं, सब शिक्षक हैं, मेरे कल्याणकारी हैं, खुदा दोस्त हैं। मेरे हर कर्म में मेरे साथी हैं। आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं, जो आपने मुझे अपनाया है, मुझे सद ज्ञान दिया है। शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं पुनः स्वयं को इस भौतिक शरीर में अनुभव कर रही हूं। लेकिन अब मेरा मन पहले से अधिक शक्तिशाली है। ओम शांति शांति शांति।